आज की तारीख है 1965 प्रातः क्लास। रिकॉर्ड चला है महफिल में जल उठी क्षमा काहे के लिए, इसके लिए महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, और आगे प्रीत बनी है दुनिया में मर जाने के लिए। ये परंपरा कहाँ से पड़ी, ये प्रीत की परंपरा कहाँ से पड़ी? संगम युग से जब परमपिता परमात्मा आता है तो ये परंपरा डालता है कि परमात्मा की प्रीति में जो परवाने मरते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। मर जाने के लिए ही क्षमा आई हुई है। दुनिया वाले तो फांसी खा के मरते हैं और यहाँ जीते जी याद की यात्रा में ऊंची स्टेज में फांसी पे लटक जाते हैं और दुनिया को भूल जाते हैं। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। क्या हद की महफिल क्या होती है और बेहद की महफिल क्या होती है? हद माना क्या, बेहद माना क्या? हद माने थोड़े लोगों की महफिल और बेहद माना ज्यादा से ज्यादा 500-700 करोड़ की महफिल। क्योंकि परमात्मा की तो परवाने सभी है, क्योंकि वो सच्चा बाप है और बेहद का सच्चा बाप है। हद के बाप होते हैं 2, 4, 5, 10, 20, 50 के बाप, और ये है 500 करोड़ का बाप। भले सब उसके ऊपर फिदा नहीं होते हैं, जीते जी मरते नहीं है, फिर भी वो है तो बेहद का बाप। तो 550 करोड़ की महफिल अभी है कि होने वाली है? है अभी का मतलब संगम युग में, कलयुग के अंत जब एटमिक एनर्जी तैयार हो जाती है। हर हर बम बम का नारा लगने वाला होता है, तब ये बेहद की महफिल बढ़ती चली जाती है। लास्ट में ये जाके इतनी बड़ी महफिल हो जाएगी कि सारी दुनिया की आत्मा इसमें समा जाएंगी। इसलिए बोला ये अभी है बेहद की महफिल। अभी माना संगम युग में। बाप आते भी हैं बहुत बड़ी महफिल में, सतयुग में तो छोटी महफिल होती है, क्योंकि आदमी कितने होंगे? इस धरती के 9 लाख चैतन्य सितारे होंगे और कलयुग के अंत में 500-700 करोड़ हो जाते हैं। तो जहाँ छोटी महफिल होती है वहाँ बाबा आता नहीं है। बाबा माना साकार और निराकार का मेल, शिव बाबा। सतयुग में नहीं आता है। जब पूरी महफिल बनती है तब आत्मा यहाँ आ जाती है और सारी आत्मा यहाँ आ जाती है, तब बाप आते हैं। कहाँ से आ जाती है? जिसे अंग्रेज लोग कहते हैं सोल वर्ल्ड, सुप्रीम एबोड, मुसलमान लोग कहते हैं अर्श, خدا عرش میں رہتا ہے، روحیں بھی وہاں سے آتی ہیں، روحانی باپ بھی وہاں سے آتا ہے. اور ہندوؤں کی گیتا میں تو پورا ایک شلوک بتائی دیا ہے، نہ تد باسیتے سوریو نہ سسانکو نہ پاوک یت گتوا نہ نورتنتے تد دھاما پرم مم. وہ میرا پرم دھام ہے، جہاں جا کر کے منشیات میں اسے کلیو کی پاپی دنیا میں واپس نہیں آتی، جہاں سورج چاند ستاروں کا پرکاش نہیں پہنچتا، میں اس دھام کا رہنے والا ہوں. تم بندو بندو آتماؤں کے ساتھ میں وہاں رہتا ہوں، تمہارے بھی وہاں شریر نہیں ہوتے، لیکن تمہاری اویناشی آتما وہاں وراجمان ہوتی ہے. تو سب آتما یہاں اس سرتی پر آ جاتی ہے، تب باپ آتے ہیں. بند تھوڑی آتمائیں بھی ہوں جو ابھی اوپر رہی ہوئی ہے، وہ بھی آ جائیں گی. جب ساری آتمائیں اوپر سے نیچے آ جاتی ہیں، تب تک میرا بھی کام سماپت ہو جاتا ہے. کیا کام؟ نئی دنیا کی استھاپنا، پرانی دنیا کا وناش، اور جو نئی دنیا کا نیا سنگٹھن میں استھاپن کرتا ہوں برہمنوں کا، ان برہمن دیوتاؤں کی پالنا کا کام وشنو تیسری مورتی کے دوارا کراتا ہوں. تو یہ برہما، وشنو اور شنکر، یہ تین وشیش کرتویہ دھاری ہیں سرشتی روپی رنگ منچ پر، جو ساری سرشتی کے اوپر وشو وجے کر کے دکھلاتے ہیں، جن کی یاد میں آج بھی ہمارے دیش میں جھنڈا روہن میں کیا گایا جاتا ہے، وجئی وشو ترنگا پیارا جھنڈا اونچا رہے ہمارا. کیونکہ گیتا میں بتایا ہے کہ یہ شریر وستر ہے، جیسے آتما ایک وستر چھوڑ کر کے دوسرا دھارن کرتی ہے، वासांसि जीर्णायन सदा यथा विहाय. तो पुराने वस्त्रों को जैसे ये आत्मा त्यागती है, तो वस्त्र माने क्या हुआ? शरीर. तो ये शरीर रूपी तीन वस्त्र है, एक क्रांति का कार्य करता है. संकल्पों की खूनी क्रांति से लेकर स्थूल क्रांति तक होती है, वो है सर्वोपरि देवता. उसको कहा जाता है देव देव महादेव. वो केसरिया रंग सबसे ऊपर दिखाया जाता है. और दूसरा है नई सृष्टि की स्थापना करने वाला, ब्राह्मणों की रचना करता है ज्ञान सुना करके. ज्ञान से ही सदगति होती है. जिसमें ज्ञान होता है वो अपने कर्मों को सुधार सकता है. जिसमें कर्म अकर्म विकर्म का ज्ञान नहीं होता, वो कर्मों के सुधारने पर ध्यान नहीं देता, खुद भी नीचे गिरता है, सृष्टि भी नीचे गिरती है. तो ब्रह्मा द्वारा आकर के ब्रह्मा के मुख से ऐसे ज्ञानी आत्मा ब्राह्मण पैदा करता है. उन ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, जिन्हें सूर्यवंशी चंद्रवंशी ब्राह्मण कहा जाता है, उनकी राजाई परमात्मा के द्वारा स्थापन होती है इस सृष्टि पर. सारे विश्व को वो कंट्रोल करते हैं. तो उस समय का यादगार है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा. बाकी लोग तो समझते हैं कि कोई कपड़े का झंडा हुआ है जिसने विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सृष्टि के आदि में जो नई सृष्टि स्थापन की थी सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों की, उनकी जनसंख्या बहुत थोड़ी थी। गैन है उनका 9 लाख सितारे, वो आसमान के सितारे हैं, जड़ सितारे, और ये श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं धरती के चैतन्य सितारे। कहते भी है प्रकृति के मध्य में चमकता है अजब सितारा। गीता में भी कहा है भ्रवोर मध्य प्राणमावेश सम्यक, जब मनुष्य अंत समय में शरीर त्यागे तो प्रकृति के मध्य में भली भांति प्राण रूप आत्मा को ध्यान करे। जिस प्राण रूप आत्मा की ज्योति इन दोनों आंखों से निकलती है, जिसकी यादगार में प्रकृति के मध्य में बिंदी लगाई जाती है, पुरुष लोग टीका लगाते हैं। प्राचीन परंपरा ऋषियों महर्षियों ने डाली थी ताकि एक दूसरे को आत्मिक दृष्टि के रूप में देखें। बाद में बुद्धिवादी होने के कारण पुरुषों ने तिलक लगाना छोड़ दिया। माताएं भावनावादी होती हैं तो आज भी भारत में माताएं विशेष मस्तक में बिंदु धारण किए हुए देखी जाती हैं। तो वो आत्मा रूपी सितारे जो सतयुग के आदि में और कलयुग के अंत में जब परमात्मा इस सृष्टि पर आता है तो सारी सृष्टि पर ज्ञान की चमक मारते हैं। उन्हें कहा भी जाता है नौलखा हार। नौ लाख विशेष आत्माएं हैं जो परमात्मा के गले का हार बनती है। ज्ञानी तू आत्माएं हैं, परमात्मा सुप्रीम सोल निराकार ज्योति बिंदु शिव जब इस सृष्टि पर आता है किसी मनुष्य तन में, तो वो आकर के हमारी ज्ञान की ज्योति आत्मा की ज्योति जगाता है, आत्मा का परिचय देता है कि तुम सब ज्योति बिंदु 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 आत्माएं हो, मैं तुम निराकार बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप हूं, तुम सब परम धाम के वासी हो। जब सृष्टि का विनाश होता है तो सब आत्माएं शरीर छोड़कर के पारलोक वापस जाती है, और सतयुग आदि से नई सृष्टि का आरंभ होता है और थोड़ी थोड़ी आत्माएं नीचे उतरती रहती है। थोड़ी सतयुग में, फिर उससे ज्यादा त्रेता में, फिर उससे ज्यादा द्वापर में, और कलयुग के अंत में सारी आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर आ जाती है। हर प्रकार की धारणा अर्थात धर्म को पालन करने वाली आत्माएं जब इस सृष्टि पर वृद्धि हो जाती है और सब अज्ञान की नींद में सो जाते हैं, तब मैं आकर के उनको जगाता हूं। तो उन आत्माओं को आकर के बताता हूं कि मैं तुम आत्माओं का वो बाबा हूं जिसे सब धर्मों में मान्यता प्राप्त है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं एडम। सृष्टि के आदि पुरुष का नाम एडम देते हैं, मुसलमान उसका नाम आदम देते हैं, जैनी लोग उसे आदिनाथ कहते हैं, और हिंदुओं में उसे त्वमादिदेव है, आदिदेव कहा जाता है। अब यह तो समझाया गया है कि तुम्हारा बाबा कौन है, پہلے پہلے ہمیشہ بابا کی مہیما سنانی ہے. کسی کو کوئی بھی گیان سنانا ہے تو گیان داتا کا پریچے دینا ہے. کہ وہ گیان داتا شیو کیسے ایڈم آدم آدی دیو شنکر میں آ کر کے پرویش کرتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے شیو کی آتما اور شنکر کی آتما دونوں الگ الگ آتما ہیں. شنکر کو دھیان میں بیٹھے دکھایا جاتا ہے. کس کے دھیان میں بیٹھتا ہے؟ کس کی تپسیا کرتا ہے؟ کس کو یاد کرتا ہے؟ ضرور اس کا بھی کوئی ہے بڑا جس کو یاد کرتا ہے. اس لیے بڑے کا نام شیو پہلے شنکر کا نام بعد میں دکھاتے ہیں. اور وہ باپ کا بڑا بچہ جسے دیوتاؤں میں بھی بڑا مہادیو کہا جاتا ہے وہ بڑا کاری کرتا ہے. اتنا بڑا کاری اور کوئی کر نہیں سکتا. بھارت ورش میں سب سے بڑا کام کون سا مانا جاتا ہے؟ بھارتیہ پرمپرا میں ہندو دھرم میں جو بھی ہندو دھرماولمبی ہے وہ سب سے بڑا کام کون سا بتاتے ہیں؟ جو کام سب کو کرنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ سے زیادہ کام کرنا چاہیے وہ کون سا کام ہے؟ منسا شکتی کا کام ہے، واچا کا کام ہے یا کرمیندریوں کا کام ہے؟ منسا کا کیا کام؟ جسے بھکتی مارگ میں کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا کام ہے. ہاں سب سے بڑا کام ہے پرماتما کی یاد. اس سے بڑا اور کوئی کام نہیں اور اس سے زیادہ پراپتی بھی اور کوئی کام میں نہیں. لیکن پرماتما کو پہچان کر کے جب یاد کریں گے تو پراپتی ہوگی. بنا پہچانے جس نے جو کہا ویسے ہی مان لینا اور یاد کرنا وہ اندھ شردھا ہو جاتی ہے. تو سپریم سول باپ کا پریچے سوائے باپ کے اور کوئی دے نہیں سکتا. منشیا آتمائیں تو جنمن کے چکر میں آتی ہیں. وہ سدا سے وہ جنمن کے چکر میں نہیں آتا اس لیے اس کو گیان بھولتا نہیں ہے. ہم منشیا آتمائیں جنمن کے چکر میں آتی ہیں اس لیے ہمیں سارا گیان بھول جاتا ہے. منشیہ کہا ہی جاتا ہے بھولنے والے کو. بھول ہے بھولوں کا پتلا ہے منشیہ. اور جو ابھول ہو جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے دیوتا. منشیہ جب سدھرتا ہے بدھی شریشٹھ بنتی ہے تو وہ سکھداتا دیوتا کہا جاتا ہے. منشیہ جب بگڑتا ہے تو وہ دکھداتا راکشس کہا جاتا ہے. کلیوگ کے انت میں سب راکشس ہو جاتے ہیں. نمبر وار پرشارتھ انوسار سب ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں جسے کہتے ہیں رورو نرک. جیسے نالی ہوتی ہے اس میں کیڑے بدبداتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو کاٹتے رہتے ہیں. کوئی کرمیندریوں سے کاٹتا ہے، کوئی واچا سے کاٹتا ہے، کوئی منسا کے سنکلپوں سے اور وائبریشن سے کاٹتا ہے. ایسا ایک بھی منشیہ ماتر اس سرشٹی پر نہیں ہے جو چھاتی ٹھوک کر کے کہتا ہو میں کسی کو دکھ نہیں دیتا. جب ایسی حالت اس سرشتی کی ہو جاتی ہے تب وہ سپریم سول اس سرشتی پر آتا ہے اور ستیہ سناتن دیوتا دھرم کی استھاپنا کرتا ہے. تو بولا پہلے پہلے ہمیشہ بابا کی مہما سنانی ہے. جو بھی برہمنوں کو گیان ملتا ہے کتنا بھی پرکانڈ ودوان برہمن ہو وہ گیان اصلیت میں شیو بابا کی دین ہے. وہ سچا بےحد کا باپ ہے, سچا بےحد کا شکشک ہے, سپریم ٹیچر ہے جس کو کوئی پڑھائی پڑھائی نہیں سکتا. سپریم باپ ہے جس سے بڑا برسا کوئی دنیا میں دے نہیں سکتا. وہ مکتی اور جیون مکتی کا برسا دینے والا داتا ہے اور سچا بے حد کا سدگرو ہے. اور گرو ہوتے ہیں منشیہ گرو. سکھ لوگ گاتے ہیں ایک اونکار سدگرو اکال مورت, ایک سدگرو سچا. اس کے نام کے پہلے ہی لگتا ہے ست, مانا سچا گرو, ست مانا سچا. تو ایک ہے ستگرو اور باقی سب ہے نمبر وار گرو. تو ایک ہے 100% سچا اور باقی سب نمبر وار جھوٹے اور سچے ہو جاتے. تو ایک کی ہی مہمہ ہے. یہ بات پکی پکی یاد کر لینی چاہیے. کیا واسطو میں ایک ہی سچا سدگرو شیو بھگوان ہے, باقی کوئی اپنے کو سدگرو نہیں کہہ سکتا. کہتے ہیں, اگر کہتے بھی ہیں تو وہ جھوٹی بات ہے. تو سارے ہی منشی گرو شریر چھوڑتے گئے اور دنیا نیچے گرتی گئی. یہ سدگرو ایسا ہے جو گرتی کلا والی دنیا کو اونچا اٹھا کر کے ستیگ میں لے جاتا ہے, جھوٹ کھنڈ کو سچ کھنڈ بناتا ہے. تو یہ بات پکی یاد کر لینی ہے. نام بھی شیو بابا کا لینا چاہیے. جب گنتی کرتے ہیں تو جو بندی لگاتے ہیں اس کو شیو کہا جاتا ہے. تو بےحد کا باپ شیو ہے, وہ بےحد کا شکشک ہے. ہم کو سرشتی کے آدی مدھیہ انت تینوں کال کی سمجھانی دیتے ہیں. سرشتی کے آدی میں ہم ستیگ تریتا میں رام کرشن جیسے دیوتائیں تھے. پھر جنم مرن کے چکر میں آتے آتے دواپر میں دویت وادی دنیا بن گئی. ابراہیم بدھ کرائسٹ گرو نانک آدی دویت وادی دھرم پتائیں آئے اور انہوں نے دو دو دھرم, دو دو متیں, دو دو بھاشائیں چالو کر دی. تو اس یوگ کا نام پڑتا ہے دواپر. جب دویت ہوتا ہے تو دکھ ہوتا ہے. ایکتا میں سچا سکھ ہوتا ہے. تو یہ بےحد کی ہسٹری اور جاگرافی بےحد کا باپ شیو بابا آ کر کے بتاتے. ستیگ میں کون راج کرتے تھے ایسے تو شاستروں میں بھی لکھا ہوا ہے. ستیگ میں کس کا راج تھا؟ کہتے ہیں نارائن کا راج تھا. پھر شاستروں میں یہ بھی لکھ دیا راجا ہری چند کا راجی تھا, ہرنا کشیپ کا راجی تھا. تو صاحب گپلا ہو جاتا ہے. अभी बाप आकर के बताते हैं। सतयुग आदि के पहले युग में 16 कला संपूर्ण मनुष्य होते हैं। सतयुग होता ही है 16 कला संपूर्ण। हे कृष्ण नारायण वासुदेव, उनको 16 कला दिखाया जाता है। ये तो मनुष्य गुरुओं ने कृष्ण को भगवान कह करके उनको द्वापर युग में डाल दिया। अगर कृष्ण भगवान बन के द्वापर के अंत में आया होता, महाभारत युद्ध करा के पापी कलयुग की स्थापना करके चला गया होता, तो भगवान को दुनिया में कौन मानेगा? भगवान तो श्रेष्ठ युग की स्थापना करके जाता है। कलह क्लेश वाले कलयुग को विनाश करा के जाता है। गीता में तो पहले ही श्लोक में लिखा हुआ है कि साधुओं का उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतम्। अधर्म करने वालों का विनाश करने के लिए आता हूं। तो पापी कलयुग की आकर के कैसे स्थापना करेगा? तो आकर के बाप बताते हैं कि सतयुग में कौन राज्य करते थे। 14 कला संपूर्ण त्रेता में कौन राज्य करते थे? ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि त्रेता में राम का राज्य था। फिर ये भी लिख दिया कि लंका में रावण का राज्य था त्रेता। तो सारा ही गड़बड़ घोटाला हो जाता है। वास्तव में रामायण की सारी कथा देवासुर संग्राम की शास्त्रों में सारी कथाएं और महाभारत की सारी कथा इस संगम युग की यादगार है शास्त्रों में। जब कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है, अभी सारी दुनिया में रावण राज्य, अभी वो निराकार राम उस साकार राम की अंतिम जन्म की सोल में आकर के प्रवेश करता है और रावण राज्य का विनाश कराता है। अभी सृष्टि पर जो ब्राह्मणों की दुनिया स्थापन हो रही है ब्रह्मा के द्वारा, उस ब्राह्मणों की दुनिया में रावण कुंभकर्ण मेघनाथ जैसे ब्राह्मण भी है और गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे पुरुषार्थी ब्राह्मण भी मौजूद है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों की संख्या थोड़ी और भ्रष्ट आचरण करने वाले ब्राह्मणों की संख्या जास्ती। अभी ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में देव आत्माएं भी मौजूद हैं तो दुष्ट आत्माएं भी मौजूद हैं। कौरव पांडव यादव सब इसी दुनिया में मौजूद हैं। पांडवों ने कहा जाता है जो सुप्रीम पंडा शिव है, जो पारलोक की यात्रा कराता है हम आत्माओं को, सुखधाम की यात्रा कराता है, उस पंडा बाप के बच्चे बनते हैं। उनकी संख्या उंगलियों पर गिने जाने योग्य 5 पांडवों में सल है। आदि में 5 ही होते और शास्त्रों में भी ये बात बताई है कि अंत में उनकी संख्या 7 अक्षौणी हो जाती है। महाभारत में दिखाया 18 अक्षौणी सेना थी। महाभारत में दिखाया 18 अक्षौणी सेना थी। एक एक अक्षौणी में हजारों लाखों हाथी घोड़े घुड़सवार हाथी सवार रथ सवार योद्धा दिखाई दिए। अगर उनकी संख्या गिनी जाए तो आज की दुनिया की जो आबादी है 5 سو کروڑ وہ اتنی آبادی ہوتی ہے جا کر کے. واسطو میں وہ کوئی لمیٹڈ کرو چھیتر کا میدان نہیں تھا. چھیتر مانا یدھ بھومی اور کرو مانا کرم. کرم کرنے کی یدھ بھومی. شیشت کرم کون کرتے ہیں اور بھرشت کرم کون کرتے ہیں. یہ کرموں کا یدھ ہے. یہ یدھ پرماتما آ کر کے سکھاتا ہے. وہی سیکھتے ہیں جو پرماتما کی وانی کا آدر کرتے ہیں. پرماتما کی وانی کو ہردے میں کرتے ہیں. جیون میں اس کا آچرن کرتے ہیں. وہ وانی دو روپوں میں سامنے آتی ہے. جس کو بھکتی مارگ میں کہتے ہیں تمیو ماتا چ پتا تمیو. وہ پہلے ماتا کے روپ میں سرشتی پر آتا ہے جس کا نام پڑتا ہے برہما. برہما نے بڑی اور ماں نے ماں. شاستروں میں جتنے بھی نام ہیں جیسا کام کیا ہے ویسے نام دیے گئے. تو برہما نے جیسی پالنا دی ایسی ماتر واتسلیہ والی پالنا دنیا میں کوئی دے نہیں سکتا. اس لیے وہ دنیا کی سب سے بڑی سے بڑی ماں ہے جس کے کام کے آدھار پر نام پڑتا ہے برہما. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آج کی دنیا کے جو کلیوگی بچے ہیں وہ ماں کے پیار میں جاستی بگڑ جاتے ہیں. تو ان بگڑے ہوئے بچوں کی تعداد جب جاستی ہو جاتی ہے تو پرماتما باپ کو برہما کا روپ تیاگ کر کے تمیو ماتا سے بدل کر کے تمیو پتا بننا پڑتا ہے. وہ ہے جگت کا پتا. جگتم پترم کہا جاتا ہے. جگتم پترم بندے پاروتی پرمیشورو. شنکر اور پاروتی کو جگت کا ماتا پتا کہا جاتا ہے. تو وہ شنکر کے روپ میں سنسار میں براہمنوں کی دنیا میں پرتیکش ہوتا ہے پہلے. بعد میں دھیرے دھیرے ساری سرشتی پر پرتیکش ہو جاتا ہے. انگریز لوگ بھی مانتے ہیں یہ ہمارا ایڈم ہے. مسلمان لوگ بھی مانتے ہیں یہ ہمارا وہی کلپ پہلے والا آدم ہے. ہر دھرم کی منشیا آتمائیں اس سست کے آدی پروش کو دھیرے دھیرے پہچانتی جاتی ہیں. تو یہ بے حد کی اس کی جاگرافی جو مات پتا کے روپ میں پرماتما سیوا کر کے ہم کو بتا رہا ہے یہ کوئی منشیہ سمجھانے نہیں دے سکتا. ستیگ میں کون راجی کرتے تھے کتنے علاقے پر کرتے تھے. تم کہیں گے ستیگ میں دیوتائیں سارے وشو پر راجی کرتے تھے. کون سے دیوتائیں سارے وشو پر راجی کرتے تھے. ہٹلر اور نیپولین مسولی ہوئے بڑی مہتوا کانکھا لے کر کے چلے لیکن ساری دنیا کے اوپر انہوں نے وشو کے اوپر وجے پراپت نہیں کر پائی کیونکہ راستہ غلط اپنایا. باہوبل سے وشو کی بادشاہی کسی کو نہیں مل سکتی. یہ تو یوگ بل کا گائن ہے. جس یوگ بل کے آدھار پر شنکر کا ٹائٹل پڑتا ہے وشوناتھ. کہتے بھی ہر ہر مہادیو شمبھو کاشی وشوناتھ گنگے. وہ شنکر شنکر نام روپ سے جب وناش کا کاریہ سمپن کر لیتا ہے اور برہما برہما کے نام روپ سے استھاپنا کا کاریہ کر لیتا ہے تو وہ دونوں ہی آتمائیں ایک وناشکاری اور ایک استھاپنا کاری دونوں کے سنسکار مل کر کے ایک ہو جاتے اور وہ وشنو کے روپ میں سنسار میں پرتیکش ہوتے. कोई चार हाथ का विष्णु नहीं होता है। अगर सृष्टि पर हुआ होता तो उसकी वंशावली में भी चार हाथ के लोग दिखाई देते। ये चार भुजाओं का कॉम्बिनेशन शास्त्रों में दिखाया गया। भुजा माना सहयोगी, मददगार। जैसे कहते हैं मेरा भैया शरीर छोड़ गया, मेरी दाहिनी भुजा कट गई। तो भुजा का मिसाल सहयोगी आत्मा से दिया जाता है। तो विष्णु के रूप में चार आत्माएं हैं जिनके स्वभाव संस्कार का मेल होकर के विष्णु रूप बनता है। शंकर पार्वती और ब्रह्मा सरस्वती, ये इनके संगमयुगी नाम है। जब एक्यूरेट सतयुग आदि होता है तो उनके नाम बदल करके राम कृष्ण पढ़ते। ये कृष्ण नारायण का राज्य सतयुग में होता है और त्रेता में राम सीता का राज्य गाया जाता है। दोनों का जो कॉम्बिनेशन वाला रूप है वो संगम युग के अंत में, जिसे स्वर्णिम संगम युग कहें, नर से जो नारायण डायरेक्ट बनता है, नारी से लक्ष्मी बनता है। गीता में जो ज्ञान का लक्ष्य दिया गया है, हे अर्जुन तू ऐसी करनी कर जिससे तू नर से नारायण बने, और हे नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर जिससे तू नारी से लक्ष्मी बने। तो ये नर नारायण का रूप कोई और दूसरी आत्मा ही नहीं है, रामकृष्ण की आत्माओं का ही कॉम्बिनेशन विष्णु के रूप में दिखाया गया, जिन्हें हमारे यादगार मंदिरों में लक्ष्मी नारायण के रूप में रखा गया है। जितने भी बिरला मंदिर बने हुए हैं, भव्य बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, वो इस बात की यादगार है कि उन्होंने विश्व की बहुत बड़ी सेवा करके दिखाई थी। सारे विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करके दिखाई थी। इसलिए लक्ष्मीनारायण के मंदिर में बाजू में विष्णु का चित्र भी दिखाया जाता है, जो संस्कारों के मेल की निशानी है। तो सतयुग में ये देवताएं सारे विश्व पर राज्य करती थी। विश्व कहा जाता है जब 500 करोड़ मनुष्य आत्मा इस सृष्टि पर मौजूद हो। इसलिए सारी इस मनुष्य सृष्टि में 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक ही ऐसा पैर है, एक ही ऐसा युगल रूप देवता है जिसकी कोई ग्लानि शास्त्रों में नहीं है। वो कौन सा देवी देवता है? लक्ष्मी नारायण। तो जरूर सारे विश्व ने अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से, अपने कानों से, अपनी इंद्रियों से ये प्रैक्टिकल में अनुभव किया होगा कि ये विश्व के बादशाह बनने वाले सच्चे सच्चे देवी देवताएं ये हैं जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं। सारा विश्व उनको प्यार करता है। जैसे बड़ौदे वाला बड़ौदे पर राज्य करेगा, वैसे विश्व का मालिक सारे विश्व पर राज्य करेगा। उनको कहा जाता है विश्वनाथ। यहां तो सारी दुनिया टुक्कड़ टुक्कड़ हो गई है। मनुष्य गुरुओं ने, मनुष्य धर्म पिताओं ने ऐसा विकृत ज्ञान फैलाया है कि सब टूट फूट करके आपस में लड़ते झगड़ते हैं। वहां सतयुग के आदि में ऐसे नहीं हो सकता। वो है सारे विश्व के मालिक। हर धर्म की मनुष्य आत्माएं उनको पसंद करती है, क्योंकि ये बात जान लेती है कि ये सृष्टि के आदि वाले वही महान पुरुष है जिनके आदि में परमात्मा शिव ने आकर के उनको ज्ञान सुना करके उनको ऐसा बनाया था। और कोई धर्म नहीं ऐसा होता जो विश्व की बादशाही स्थापन कर सके। ये एक सत्य सनातन धर्म ही है जिसमें परमात्मा बाप आकर के विश्व की बादशाही सृष्टि पर स्थापन करते हैं। हर धर्म में राजाएं तो होते हैं, वो अलग अलग धर्मों के फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन टुकड़ टुकड़ स्थान पर राजी करते हैं, सारे विश्व पर राजी नहीं करते। तो दुनिया में राजाएं तो क्यों नहीं होंगे? हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। कब मिलेगा है? ये राजाई का वर्षा कब मिलेगा? कौन देता है? कब देता है? इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ाने वाले होते हैं, कॉलेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, वकालत की पढ़ाई पढ़ाने वाले टीचर्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, तो पढ़ाई पढ़ते हैं और ऊंचे से ऊंचा पद लेते हैं। ये राजाई की पढ़ाई किसने पढ़ाई? कब पढ़ाई? तभी तो पढ़ाई होगी, किसी ने तो पढ़ाई होगी जो इस सृष्टि पर इतने बड़े बड़े छोटे छोटे राजाए हुए। तो ये संगमयुग का विशेष गायन है राजयोग का। इस राजयोग की पढ़ाई पढ़ाकर परमात्मा इस सृष्टि के नंबरवार राजाएं तैयार करता है। मनुष्य आत्मा में अनेक जन्मों के राजाई के संस्कारों का आरोपण करता है। अभी जो परमात्मा की दात का सत्कार करेगा वो प्रैक्टिकल जीवन में उस ज्ञान को धारण करके उतना उतना ऊंचा पद प्राप्त कर सकता है। वो नंबरवार जो पद मिलते हैं उनकी यादगार है माला, हर धर्म में माला घुमाई जाती है। हिंदू भी माला घुमाते हैं, मुसलमान भी माला घुमाते हैं, क्रिश्चियंस भी माला घुमाते हैं, बौद्ध भी माला घुमाते हैं, और हजारों वर्षों से माला घुमाई चली जाती है। लेकिन जो माला फिराने वाले हैं उस माला का और माला के मणकों का अर्थ नहीं जानते। ये वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जिन्होंने संगम युग पर राजयोग का पुरुषार्थ करके अनेक जन्मों की बादशाही परमात्मा बाप से प्राप्त की थी, जिनको सारी दुनिया आज सिमरण करती है माला के रूप में। तो दूसरे धर्मों में राजाएं क्यों नहीं होंगी? राजाएं भी होंगे, हर एक को अपना अपना वर्षा मिलेगा, क्योंकि हर धर्म में से विशेष श्रेष्ठ चुनी हुई आत्माओं को परमात्मा इस समय इकट्ठा कर रहा है, उनकी माला बनाए रहा है। ऐसे नहीं कि किसी धर्म में अच्छाई नहीं होती, हर धर्म में अच्छाई और बुराई होती है। हर धर्म आदि में सात्विक होता है और लंबे समय के बाद सतो प्रधान सतो सामान्य रजो और तामसी हो जाता है। देवता धर्म की भी यही हालत हुई। द्वापर से जिसे हिंदू धर्म कहा गया तामसी हो गया। ऐसे इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन सभी धर्म के नाम पर आज वितंडावाद बन चुके हैं। तो हर धर्म की विशेष आत्माओं को चुन करके परमात्मा इस समय राजयोग सिखा करके जन्म जन्मांतर की राजाई का वर्षा भी दे रहा है, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार भर रहा है, तो हरेक को अपना अपना वर्षा मिलेगा। राधे का और श्री कृष्ण का जो माँ बाप थे वो भी राजे रजवाड़े थे। फिर शास्त्रों में दिखाया है उनकी शादी हुई, दोनों अलग अलग गांव की थी, एक गांव से दूसरे गांव ले जाते हैं डोली में बिठाए करके, फिर शादी होती है। कोई कहे कृष्ण गया राधे के पास उनको ले आने के लिए, फिर एवज में गांव आदि सब दे देते हैं। पहले पहले मुख्य बात है ऊंचते ऊंच शिव बाबा। इस बात को जब तक नहीं समझा है तब तक आगे की बातें समझ में नहीं आवेंगी। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में जिन राधा कृष्ण की बात आई है, जिन कौरव पांडवों की बात आई है, जिन राम और रावण की बात आई है, वो सब संगमयुगी दुनिया के पाठधारी थे। उनकी अपनी अपनी एक्ट के आधार पर, चलन के आधार पर, कार्य के आधार पर उनके ये नाम पड़े हैं। जैसे नाम पड़ता है युधिष्ठिर, युद्ध में जो स्थिर रहा, ये कर्मों का युद्ध है। युद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र समवेतायुत्सव, कोई स्थूल युद्ध परमात्मा ने आकर के नहीं सिखाया, वो तो कर्मों की गुह्य गति आकर के बताता है। तो ऐसे युद्ध क्षेत्र में मुख्य बात समझनी है परमपिता परमात्मा के परिचय की। जो ऊंचते ऊंच पाठ बजाता है षष्ठी रूपी रंगमंच पर, इसलिए सारी दुनिया की जो भी खुदाइयां हुई है अथवा जो भी मंदिर है उनमें सबसे जास्ती शिवलिंग पाए जाते हैं उस निराकार की यादगार। शिव ज्योति बिंदु है, उस ज्योति बिंदु का बड़ा आकार शिवलिंग बनाया गया है पूजा करने की सुविधा के लिए। सोमनाथ मंदिर में भी चुंबक के आधार पर ऊपर मंदिर में हीरे का शिवलिंग जड़ा हुआ था। वो हीरा है सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु की यादगार, और जिस लिंगाकार पत्थर में जड़ा हुआ था वो लिंगाकार पत्थर है उस शरीरधारी की यादगार, जिसे झंडे के चित्र में केसरिया रंग लाल रंग के रूप में दिखाया जाता है। वो लाल रंग का पत्थर था, वो ज्योतिबिंदु आत्मा और वो शरीरधारी दोनों मिलकर के बनते हैं शिव बाबा। वो शिव बाबा के मंदिर दुनिया में गांव-गांव में शहर शहर में भारतवर्ष में तो मिलते ही हैं, लेकिन विदेशों में भी जो खुदाइयां हुई हैं, ग्रीस की खुदाई, मेसोपोटामिया की खुदाई, सिंध और हड़प्पा की खुदाई, वो सब जगह वो लिंग मूर्तियां मिली हैं, और साथ में नग्न मूर्तियां शंकर की यादगार मिली है जिसे ध्यानमग्न स्टेज में बैठे हुए दिखाया जाता है। जैनी लोग उनको तीर्थंकर नाम देते हैं, जैसे भारत में हिंदुओं ने 24 अवतार दिखा दिए हैं, उसे एक की यादगार 24 तरीके से पाठ बजाते हुए दिखा दिया, ऐसे ही जैनियों में 24 तीर्थंकर दिखा दिए है, वास्तव में एक ही। तो पहले पहले मुख्य बात है ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा की महिमा करना। जो सच्चा बेहद का बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है, बेहद की इसलिए کہ دنیا میں جو یونیورسٹیز ہوتی ہیں ان میں لمیٹڈ لوگوں کو پڑھایا جاتا ہے, اور بے حد کی یہ جو یونیورسٹی ہے جو پرماتما باپ آ کر کے کھولتے ہیں, جو سچے ارتھوں میں جسے کہا جائے وشو ودیالے, اس میں ساری دنیا کی 500-700 کروڑ منشیات میں سب کو آگے پیچھے پڑھائی پڑھنی ہے, اور پڑھنی ہی پڑے گی, کیونکہ سچائی ستیہ باپ سے آتی ہے, وہ سچا سائیں بابا ہے, سائیں سوامی کو کہا جاتا ہے, وہ سب کا سوامی ہے, وہ سچا سائیں جب اس سچی پر آ کر کے ستیتا کی بات بتاتا ہے, بے حد کی شکشا دیتا ہے, تو 500-700 کروڑ منشیات میں اس پڑھائی کو پڑھتی ہے, بھلے بناش کے انت تک یہ یونیورسٹی چلتی رہتی ہے. سچ کے آدھ مدینت کی نالے سمجھائے, وہ باپ آ کر کے ہم کو تکال درسی بناتے ہیں, اسے دنیا میں ہی ترکال درسی بناتے ہیں. ہم سب بندو بندو آتمائیں اس سستی روپی رنگ منچ پر پارٹ دھاری ہیں, الگ الگ جنموں میں الگ الگ چولے شریر روپی وستر دھارن کر کے ہم اپنا پارٹ بجاتے ہیں رنگ منچ پر, لیکن ہم اپنے پارٹ کو بھول جاتے ہیں. جیسے دنیا میں کوئی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو پہلی کی ساری اسمرتی اس کی غائب ہو جاتی ہے, ایسے ہی مرتیو بھی جیون میں ایک ایسا ایکسیڈنٹ ہے جس کے آدھار پر آتمائیں سب کچھ بھول جاتی ہیں. کوئی کوئی آتماؤں کو ایک دو جنم کی بات یاد بھی رہتی ہے, لیکن پرائے کر کے ایسا نہیں ہوتا. تو ان کو ترکال درسی نہیں کہہ سکتے کیونکہ سب بھول جاتے ہیں. ابھی باپ آ کر ہم کو بتاتے ہیں کہ تم بچے سشٹی روپی رنگ منچ کے پارٹ دھاری تو ہو, تم آتما روپی پارٹ دھاری تو ہو, لیکن بیوقوف پارٹ دھاری ہو. وہ پارٹ دھاری ہی کیا جو اپنے پارٹ کو نہ جانتا ہو, انیک جنموں میں کیا کیا پارٹ بجائے, کیسے کیسے چولے دھارن کیے, کون کون سے دیش میں جنم لیا اور کیا کیا کرتوی کیے, تو اس پارٹ دھاری کو بیوقوف پارٹ دھاری ہی کہا جائے گا. تو ہم اس سمے انتم جنم میں آ کر کے سب بیوقوف پارٹ دھاری ہیں. ابھی پرماتما باپ ہم کو گارنٹی دیتا ہے, ہے ارجن تو اپنے پورو جنموں کو نہیں جانتا, میں تیرے کو اس گیان کی شرنی کے آدھار پر, اس راجیوگ کے آدھار پر ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طریقوں کو دھارن کر کے اپنے جیون میں اپلائی کر کے اگر تم چلتے رہیں گے تو انت میں تمہیں اپنے جنموں کی ساری ہسٹری پتہ چل جائے گی. اس سستی روپی رنگ منچ کے ہیرو ہیروئن ہیں رام اور کرشن, باقی سبھی نمبر وار پارٹ دھاری. تو سب سے پہلے کس کو پتا چلے گا؟ ضرور جو ہیرو ہیروئن ہوں گے. دنیا میں بھی کوئی فلم بناتے ہیں یا کوئی ناٹک بازی کرتے ہیں تو ہیرو ہیروئن بیوقوف کو بنایا جاتا ہے یا ہوشیار آدمی کو بنایا جاتا ہے؟
ہوشیار آدمی.
تو پرماتما شیو سپریم سول بھی سشتی پر آ کر کے جو آل راؤنڈ پارٹ دھاری ہیں رام کرشن کی آتمائیں ان کو چنتا ہے, اور ہیرو ہیروئن کا پارٹ ان کے دوارا پلے کراتا ہے. وہ رام کرشن کی آتمائیں گیان کے منن چنتن منتھن کی گہرائی میں جا کر کے कर्म योग की गहराई में जाकर के सबसे पहले अपने जन्मों को प्रत्यक्ष कर लेती है, फिर उन माँ बाप के आधार पर सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, जो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कनेक्शन में आने वाली है, किसके कनेक्शन में, जन्म जन्मांतर राम कृष्ण वाली आत्माओं के कनेक्शन में आती रहती है, वो भी अपने पार्ट को जान लेती है। तो बाप बताते हैं कि मैं इस दुनिया में आकर के तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूं, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य त्रिकालदर्शी नहीं है जो अपने आगे और पीछे के जन्मों को जानता हो। तुम सब पुरुषार्थ करने वाले अर्जुन हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। रचयिता और रचना के आदि मध्यंत को कोई भी नहीं जानता। जब नहीं जानते हैं तो शास्त्रों में लिख दिया बेअंत है, बेअंत है, उसके आदि मध्यंत को हम नहीं जानते। उनकी महिमा तो अपरम अपार है। अभी तुम जानते हो कि वह बेहद का बाप है, बेहद का सदगुरु है, सबकी सदगति करके सबको साथ ले जाने वाला पंडा इस सृष्टि पर आया हुआ है। कहां ले जाने के लिए आया हुआ है? वो पंडे तो उन हद के तीर्थों पर ले जाते हैं जहां जाकर के मनुष्य आत्माएं फिर वापस अपनी उसी राम रहने वाली दुनिया में आ जाती है। लेकिन ये बाप तो, ये ऐसा बाप पंडा आया हुआ है कि हम सब आत्माओं को परम धाम की यात्रा कराए, फिर सुखधाम में इस सृष्टि पर भेज देता है, सतयुग में भेज देता है। नंबरवार मनुष्य आत्माएं देव पद प्राप्त करने के लिए सतयुग और त्रेता में उतरती रहती है। दुनिया की जनसंख्या बढ़ती रहती है, द्वापर में दूसरे दूसरे धर्म आते हैं तो जनसंख्या की बाढ़ आ जाती है। कलयुग अंत में विकार बहुत बढ़ जाते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार देवताओं में थे ही नहीं। भले शास्त्रों में लिख दिया है कि देवताएं भी विकारी थे, वास्तव में वो इस समय की यादगार है। सतयुग त्रेता में कोई विकार नहीं होते, जहां विकार होंगे वहां दुर्बुद्धि होगी। कहते भी है जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। विकारी बुद्धि बनती है तो मनुष्य दुखी हो जाता है, निर्विकारी देवताई बुद्धि बनती है तो सतयुग में मनुष्य सुखी हो जाता है। तो सबको साथ ले जाने वाला पंडा इस सृष्टि पर आया हुआ है, वो तो जिस्मानी पंडे होते, और ये है रूहानी पंडा जो जिस्मों को नहीं ले जाएगा। जिस्म इसी सृष्टि पर रह जाएंगे, जिस्म विनाशी है, वो अविनाशी आत्मा को ले जाएगा। अच्छा, ओम शांति।